दानियल अध्याय 7। यहाँ पर दानियल की पुस्तक के ऐतिहासिक भाग लगभग समाप्त हो जाता है। अध्याय 7 के आरंभ के साथ हम अतीत के उन वर्षों में जाते हैं जिनमें दानियल ने दर्शन देखे थे। दूसरे शब्दों में अध्याय 7 का ये विशेष दर्शन दानियल ने बेलशेसर राजा के प्रथम वर्ष में देखा था। अब आप यहां देख रहे हैं कि दानियल की कहानी हमें उसके अंतिम दिनों अर्थात मादी फारसी राजा दारा और कुसरू के राज्यकाल में ले आई है। यहां हम भूतकाल में जाएंगे और उन भविष्यवाणियों और दर्शनों को देखेंगे जो दानियल को दिए गए थे। अध्याय 7 का पहला दर्शन उसे तब मिला जब बाबुल पर बेलशेसर के राज्य का पहला वर्ष था। दानियल अध्याय 7 पद 1 से लेकर 7 तक। बाबुल के राजा बेलशेसर के पहले वर्ष में दानियल ने पलंग पर स्वप्न देखा। तब उसने वो स्वप्न लिखा और बातों का सारांश भी वर्णन किया। दानियल ने ये कहा, मैंने रात को ये स्वप्न देखा कि महासागर पर चारों ओर आंधी चलने लगी। तब समुद्र में से चार बड़े बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। पहला जंतु सिंह के समान था और उसके पंख उकाब के से थे और मेरे देखते देखते उसके पंखों के पर नोचे गए और वो भूमि पर से उठाकर मनुष्य की नाई पांव के बल खड़ा किया गया और उसको मनुष्य का हृदय दिया गया। फिर मैंने एक और जंतु देखा जो रीछ के समान था और एक पंजर के बल उठा हुआ था और उसके मुंह में दांतों के बीच तीन पसुली थी और लोग उससे कह रहे थे, उठकर बहुत मांस खा। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा कि चीते के समान एक और जंतु है जिसकी पीठ पर पक्षी के से चार पंख है और उस जंतु के चार सिर थे और उसको अधिकार दिया गया। फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि एक चौथा जंतु है जो भयंकर और डरावना और बहुत सामर्थी है और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत है। वो सब कुछ खा डालता है और चूर चूर करता है और जो बच जाता है उसे पैरों से रौंदता है और वो सब पहले जंतुओं से भिन्न है और उसके 10 सिंह हैं। जब हम इन चारों जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं तब हम नबूकदनेज़र के स्वप्न से इसका संबंध पाते हैं जिसका अर्थ दानियल ने बताया था। नबूकदनेज़र ने सपने में पृथ्वी पर शासन करने वाले राज्यों को देखा था जो सारे विश्व पर शासन करेंगे। उसने सपने में एक मनुष्य की सी आकृति को देखा था जिसका सिर सोने का, छाती चांदी का और पेट तांबे का, जांग लोहे की और पैर एवं 10 अंगुलियां लोहे और मिट्टी की बनी थी। और उसने ये भी देखा कि एक पत्थर बिना किसी के मारे कहीं से उठकर आया और उस मूर्ति के पैरों से टकराया और मूर्ति टूट गई और वो पत्थर एक बड़ा पहाड़ बनकर पूरी पृथ्वी पर छा गया। यहां हमारे पास उसी के समानांतर दानियल का दर्शन है। यहां उसने संसार पर शासन करने वाले राज्य को केवल मनुष्य के रूप में नहीं देखा परंतु उसने उन्हें जंतु के रूप में देखा। पहला सिम के समान था और वो बाबुल का शासन था। उसके उकाब की तरह पंख थे जो टूटकर या उखाड़कर नीचे गिर गए। वो जमीन से उठाया गया और मनुष्य की तरह खड़ा किया गया। दूसरा रीच के समान था और उसके मुंह में तीन पसलियां थी। वो मादी फारसी साम्राज्य था। तीसरा जो चीते के समान था वो सिकंदर महान के नेतृत्व में यूनानी साम्राज्य था। उसके चार सिर थे। जब सिकंदर महान मरा तब उसके कोई संतान न थी, इसलिए उसका वंश नहीं चला, परंतु उसका राज्य चार भागों में बट गया और उसके चार अधिपति चार भाग में शासन करने लगे, एक मिस्र में, दूसरा एशिया माइनर में, तीसरा सीरिया में और चौथा यूनान में। इस तरह वो चार सिरों में बट गया। अंत में ये जंतु रोम का साम्राज्य, जो बहुत ही भयंकर जंतु है, आप इसे ना तो सिम कह सकते हैं और ना ही रीछ, ये एक ऐसा भयंकर जानवर था जो सच में पाया ही नहीं जाता है। इसके 10 सींग थे जो हमें नेबुकदनेज़र के सपने की 10 उंगलियों की याद दिलाते हैं। इस जंतु से निकलने वाले 10 सींग हैं जो नेबुकदनेज़र के स्वप्न की मूर्ति के पांव की 10 उंगलियों के तुल्य है, परंतु वे लोहे और कुछ मिट्टी से नहीं बने हैं। वे रोमी साम्राज्य से संबंध दर्शाते हैं। ये भी एक ऐसा ही स्वप्न है। परमेश्वर फिर से संसार पर प्रभुता करने वाले चार साम्राज्य के बारे में बता रहा है। इससे आगे हम कुछ और रोचक तथ्यों को देखेंगे जो नेबुकदनेज़र के स्वप्न में नहीं थे। दानियल अध्याय 7:8। मैं उन सिंहों को ध्यान से देख रहा था तो क्या देखा कि उनके बीच एक और छोटा सा सिंह निकला और उसके बल से उन पहले सिंहों में से 3 उखाड़े गए। फिर मैंने देखा कि इस सिंह में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोल बोलने वाला मुंह भी है। अंत के दिनों में रोमी साम्राज्य से संबंध रखने वाले राष्ट्रों का एक संगठन बनेगा। वे 10 राष्ट्र होंगे जो 10 अंगुली और 10 सिंगों द्वारा दर्शाया गया है। आज हम यूरोपीय समाज में ऐसे 10 राष्ट्रों को देखते हैं जो रोमी साम्राज्य से संबंधित है और उन्होंने अपना एक संगठन बना लिया है। ये संभव है कि आज हम जो यूरोपीय समाज में देख रहे हैं वो दानियल की इस भविष्यवाणी की पूर्ति का आरंभ है। मैं विश्वास करता हूं कि ये एक संयोग से ज्यादा है कि पश्चिमी यूरोप एक वित्तीय महान और औद्योगिक साम्राज्य के रूप में उभर रहा है और उसमें वो सब योग्यताएं हैं जो दानियल के इस दर्शन को पूरा करने के लिए जरूरी है। लेकिन यहां एक 11वां सिंह भी है जो दरअसल 3 सिंहों को अपने बल से जड़ से उखाड़ फेंकेगा। इस सिंह में मनुष्य की तरह आंखें हैं और एक बड़ा बोल बोलने वाला मुंह है। यह 11वां सिंह मसीह विरोधी है जो आएगा और 3 राजाओं को उखाड़ फेंकेगा। दानियल अध्याय 7:9। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए। नेबुकदनेज़र के दर्शन में आपको याद है कि पत्थर उसके पैरों पर लगा, पत्थर उस मूर्ति के पैरों से टकराया और वो मूर्ति चूर चूर हो गई, वो नीचे गिर गई। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए। दानियल अध्याय 7:9-10। और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ, उसका वस्त्र हिम सा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीके थे। उसका सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए धधकती हुई आग के से दिखाई पड़ते थे। उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गई। अतः वो इन सिंहों को तब तक देखता रहा जब तक कि वे गिर न गए, और वास्तव में उसने परमेश्वर के सिंहासन को देखा, अति प्राचीन को, और परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर भव्यता और महिमा को देखा। हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। हम प्रकाशित वाक्य के अध्याय 4 और 5 में देखते हैं कि परमेश्वर सिंहासन पर बैठा है, जिसके चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष है। हम इसके सामने बिल्लोर के समान कांच का समुद्र देखते हैं। परमेश्वर के सिंहासन के सामने 24 प्राचीन अपने सोने के मुकुट के साथ है, और उसके चारों ओर करूब कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान। हम सिंहासन पर बैठे परमेश्वर की चमक को भी देखते हैं। तब हमारा ध्यान उस पुस्तक की ओर जाता है जो परमेश्वर के दाहिने हाथ में है, क्योंकि एक स्वर्गदूत ऊंचे शब्द में पुकार रहा था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है? और हम यीशु को एक वध किए हुए मेमने के रूप में देखते हैं, जिसके आगे आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा है वो पुस्तक ले ली। तब हम देखते हैं कि प्राचीनों ने सुगंधित धूप से भरे सोने के कटोरे, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, उसे अर्पित किए और गुणगान शुरू किया, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरे खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हरेक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। और जब उसने लाखों करोड़ों स्वर्ग दूतों का शब्द दानियल के समान वहां परमेश्वर के सिंहासन के सामने ये कहते सुना, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। अतः फिर से स्वर्ग में इसके तुरंत बाद के दृश्य में वो पुस्तक खोली जाती है, और तब दंड उंडेला जाता है, पर वो श्वेत सिंहासन का न्याय नहीं है। वो दंड मसीह को अस्वीकार करने वाले संसार के ऊपर आने वाला दंड है, जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य के अध्याय 6 से 18 तक में दिया है। दानियल और यूहन्ना ने परमेश्वर के सिंहासन की महिमा और मनुष्य के दंड का एक सा दर्शन देखा था। दानियल अध्याय 7:11, उस समय उस सिंह का बड़ा बोल सुनकर मैं देखता रहा, और देखते देखते अंत में देखा कि वो जंतु घात किया गया। हमें इस जंतु के संदर्भ में बताया गया है, ये पाप का मनुष्य सर्वनाश या अनंत मृत्यु का पुत्र है, जिसे मसीह विरोधी कहते हैं, जो स्वर्ग के परमेश्वर के विरुद्ध बहुत निंदापूर्ण बात करता है। अंत में वो घोषणा करता है कि वो स्वयं परमेश्वर है और उसकी आराधना की जाए। जो उसे अस्वीकार करते हैं उन्हें वो मौत देता है। अतः मैं देखता रहा जब तक वो जंतु घात ना किया गया। दानियल अध्याय 7:11 में आगे लिखा है, और उसका शरीर धधकती हुई आग से भस्म किया गया। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हम पाते हैं कि जब यीशु फिर से आएगा तो वो शैतान के इस घातक यंत्र को, इस पाप के मनुष्य को नष्ट करेगा, और वो आग की झील गहन्ना नरक में डाला जाएगा। अतः यहां दानियल और प्रकाशित वाक्य में एक दूसरे के समानांतर दर्शन व्यक्त है। दानियल अध्याय 7:12 से लेकर 14 तक, और रहे हुए जंतुओं का अधिकार ले लिया गया, पृथ्वी के राज्यों का, परंतु उनका प्राण कुछ समय के लिए बचाया गया। मैंने रात स्वप्न में देखा और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था, और वो उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको व उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। अतः वो यीशु मसीह को और उसके द्वारा महिमामय राज्य के प्राप्त करने को देखता है। ये वो राज्य जो कभी समाप्त नहीं होगा। यशया की पुस्तक में लिखा है, यशाया अध्याय 9:6-7, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा, इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा। और स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, लूका अध्याय 1:30-33 तक, हे मरियम भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, और देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना, वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। अतः इन सब बातों में दानियल ने एक सुंदर अंतर्दृष्टि पाई थी। वो प्रभु यीशु को बादलों पर आते देखता है, वो अति प्राचीन के पास आकर अधिकार, प्रभुता, महिमा और राज्य प्राप्त करता है, ताकि सारे संसार पर शासन करे। भजन संहिता के भजन 2 में परमेश्वर यीशु से कहता है, भजन संहिता 2:8, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। परमेश्वर का महिमामय भव्य राज्य। दानियल अध्याय 7:15-18 तक, और उसने कहा, मुझ दानियल का मन विकल हो गया और जो कुछ मैंने देखा था उसके कारण मैं घबरा गया। तब जो लोग मेरे पास खड़े थे उनमें से एक एक के पास जाकर मैंने उन सारी बातों का भेद पूछा। उसने ये कहकर मुझे इन बातों का अर्थ बताया। उन 4 बड़े बड़े जंतुओं का अर्थ 4 राज्य है जो पृथ्वी पर उदय होंगे, परंतु परम प्रधान के पवित्र लोग राज्य को पाएंगे और युगान युग उसके अधिकारी बने रहेंगे। ये वे राज्य है जो सारी पृथ्वी पर शासन करेंगे, परंतु अंत में पवित्र लोग उनसे ये राज्य ले लेंगे। दानियल अध्याय 7:19-21 तक, तब मेरे मन में ये इच्छा हुई कि उस चौथे जंतु रोमी साम्राज्य का भेद भी जान लूं, जो अन्य तीनों से भिन्न और अति भयंकर था और जिसके दांत लोहे के और नख पीतल के थे। वो सब कुछ खा डालता और चूर चूर करता और बचे हुओं को पैरों से रौंद डालता था। फिर उसके सिर के 10 सिंगों का भेद और जिस नए सिंग के निकलने से 3 सिंग गिर गए, अर्थात जिस सिंह के आंखें और बड़ा बोल बोलने वाला मुंह और सब अन्य सिंहों से अधिक भयंकर था, उसका भी भेद जानने की मुझे इच्छा हुई। और मैंने देखा कि वो सिंह पवित्र लोगों के संग लड़ाई करके उन पर उस समय तक प्रबल भी हो गया। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अध्याय 13 में समुद्र में से एक जंतु अर्थात मसीह विरोधी के बाहर निकलने की बात करता है, जो पवित्र लोगों के संग लड़ाई करके उन पर विजयी होगा। मसीही विरोधी पवित्रों के विरुद्ध प्रबल होगा। अतः मैं समझता हूं कि ये पवित्र लोग कलीसिया नहीं है, क्योंकि हमारे पास यीशु मसीह की प्रतिज्ञा है जो उसने कैसरिया फिलिपी में बातें करते हुए अपने शिष्यों को दी थी। ये उस समय की बात है जब पत्रस ने उससे कहा था, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने कहा, मती अध्याय 16 पद 18, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर ना प्रबल होंगे। मसीही विरोधी का या अधोलोक के फाटकों का या शैतान का यीशु मसीह के कलीसिया पर प्रबल होने का सवाल ही नहीं उठता। अतः मसीही विरोधी द्वारा पवित्रों के विरुद्ध प्रबल होने की सच्चाई चर्च से संबंधित भविष्यवाणी नहीं है। ये पवित्र जन संकट के समय में बचाए हुए इसराइली होंगे। वो यरूशलेम में आकर इसराइल के वंश के विरुद्ध युद्ध करेगा। अपनी भविष्यवाणी में दानियल ने कलीसिया नहीं देखी थी। वो पवित्र लोगों के विरुद्ध युद्ध करके उन पर प्रबल भी हो गया। दानियल अध्याय 7 पद 22। जब तक वो अति प्राचीन न आया और परम प्रधान के पवित्र लोग न्यायी न ठहरे और उन पवित्र लोगों के राज्य अधिकारी होने का समय न आ पहुंचा। अब आपको याद है पौलुस ने कुरिन्थियों की कलीसिया को डांटा था। उसने कहा था, तुम अपने भाई को एक मूर्ति पूजक न्यायी के यहां ले जाकर ये क्या कर रहे हो? तुम जानते हो तुम उन्हें न्यायालय में खड़ा कर रहे हो। तुम्हें ये सब बातें कलीसिया में ही निपटानी चाहिए। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग इस संसार का न्याय करेंगे? न्याय पवित्र जनों को दे दिया गया है। हम एक दिन इस संसार का न्याय करेंगे। रोचक, यही वो एक बात है जो मैं कभी नहीं चाहता। मैं हवाई तट पर नारियल एकत्रित करने का काम कर सकता हूं, परंतु पवित्र लोग राज्य करेंगे। दानियल अध्याय 7 पद 23 से लेकर 25 तक। उसने कहा, उस चौथे जंतु रोमी साम्राज्य का अर्थ एक चौथा राज्य है जो पृथ्वी पर होकर और सब राज्यों से भिन्न होगा और सारी पृथ्वी का नाश करेगा और दाव कर चूर चूर करेगा। और उन 10 सिंगों का अर्थ यह है कि उस राज्य में से 10 राजा उठेंगे और उनके बाद उन पहलों से भिन्न एक राजा उठेगा जो 3 राजाओं को गिरा देगा और वो परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा। वरन 3.5 काल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। 3.5 साल के लिए वो राज्य करेगा। वो यरूशलेम में आएगा और इसराइल के विरुद्ध युद्ध करेगा। अपने शासन काल के पहले 3.5 साल में वो इसराइल के साथ वाचा बांधेगा। इसकी चर्चा हम 9वें अध्याय में करेंगे, परंतु जब वो मध्य में ही संधि को तोड़ देगा तब अंतिम चरण का आरंभ होगा और यीशु मसीह आएगा। परंतु ये सच है कि उसे इसराइल के छुड़ाए हुओं पर 3.5 साल तक शासन करने का अधिकार दिया गया है। दानियल अध्याय 7 पद 26 से लेकर 28 तक। परंतु तब न्यायी बैठेंगे और उसकी प्रभुता छीनकर मिटाई और नष्ट की जाएगी, यहां तक कि उसका अंत ही हो जाएगा। तब राज्य और प्रभुता और धरती पर के राज्य की महिमा परम प्रधान ही की प्रजा अर्थात उसके पवित्र लोगों को दी जाएगी। उसका राज्य सदा का राज्य है और सब प्रभुता करने वाले उसके अधीन होंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। इस बात का वर्णन मैं अब कर चुका, परंतु मुझ दानियल के मन में बड़ी घबराहट बनी रही और मैं भयभीत हो गया और इस बात को मैं अपने मन में रखे रहा।